Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में मार्केट मंत्र की समस्त परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की संजीदा चाल पर भी चर्चा करेंगे। श्रोताओं, इस विषय वस्तु की विवेचना करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक ए के भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, करजोड़ अभिनंदन। चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
Benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 400 points, Nifty settles below 24,000 level. Major Asian stock indices end mixed, and global crude oil prices jump over 3%.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 400 से ज्यादा गिरा, वहीं निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिला जुला रुख देखने को मिला और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3% का उछाल आया।
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
बिल्कुल श्रोताओं, किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले अपनी जानकारी पुख्ता कर लें और उसके बाद फिर सोच समझ कर अपने पैसों का निवेश करें। आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर बात करते हैं, जो कि आज हमारे दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो श्रोताओं, देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,887 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक लुढ़ककर 23,996 पर आ गया। वहीं व्यापक शेयर सूचकांकों में तेजी देखी गई। मिड कैप 100 में 0.3% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले की अगर बात करें तो वैश्विक शेयर बाजार में मिले जुले रुझानों के कारण बाजार की शुरुआत धीमे से हुई। सत्र के दौरान दोनों ही प्रमुख सूचकांक कुछ समय के लिए सकारात्मक रहे, लेकिन दोपहर के कारोबार में इनकी गति पर मंदड़िए हावी हुए और साथ ही निफ्टी वायदा और विकल्प अनुबंधों की मासिक समाप्ति के कारण ये गिरावट के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मौजूदा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का भी बाजार पर खासा दबाव देखने को मिला।
Benchmark domestic equity indices fell around 0.5% today. The Sensex slipped 417 points to close at 76,887, while the Nifty dipped 97 points to settle at 23,996. However, the broader market indices on the National Stock Exchange ended in the green. The mid cap 100 added 0.3%, while the small cap 100 rose 0.4%. Earlier, the market opened on a tepid note, tracking mixed trends in global equities. The Sensex and Nifty turned positive for a while but lost momentum during afternoon trade and ended lower amid the monthly expiry of Nifty futures and options contracts. Elevated crude oil prices and ongoing geopolitical uncertainties also weighed on the market.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, इंडिगो और मारुति, इन सब में लगभग 2.5% से अधिक या आसपास की गिरावट देखी गई। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम रिलायंस 1.7%, भारती एयरटेल 1.4% और टेक महिंद्रा के शेयर में लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई।
In the sectoral indices at the BSE, 16 out of 25 sectors ended in negative territory. Among the top losers, PSU Bank tanked 2.2%, BankEx lost 1.6% and top 10 banks index fell over 1.4%. In the top gainers, energy climbed over 1.7%, telecommunications as well as oil and gas jumped 1.5% and metal added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,257 companies declined, 1,998 advanced and 172 remained unchanged.
और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 36 पैसे कमजोर होकर 94.55 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.74 पर चल रहा था. भट्टाचार्य जी, कल हमारे साथ शिशिर जी मौजूद थे और क्योंकि कल मार्केट में थोड़ा सा हमने उछाल देखा, जरा सा उछाल देखा, और मैंने उनसे सवाल किया, कहा कि मार्केट में जो है, बाजार में जो है, रौनक लौट आई है. तो उन्होंने कहा कि प्राची, रौनक कहना जो है ये बड़ी ही जल्दी होगी. और आज हमने देखा कि बाजार जो है फिर आधे प्रतिशत से है वो गिरता हुआ हमें नजर आया,
क्योंकि जो 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 विश्व की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति जो है
जी,
वो अभी भी अनिश्चितता से गुजर रही है
जी.
और मुझे लग रहा है कि ये जो अनिश्चितता जो है ये दीर्घकालीन है. जब तक हमारी जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी रहेगी, मैं ये नहीं मानता कि स्टॉक मार्केट में जो उतराव और चढ़ाव जो हो रहा है
जी,
वो बंद होगा. जो हमें देखने में आ रही है, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों के बैकग्राउंड में कि टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव जो वो हमें इस बार दिखने को मिल रहा है, जैसे कि जो बैंकिंग व्यवस्था में जो आप स्टॉक मार्केट की जो जो डिक्लाइन जो आपने आज देखी
जी,
उसका कारण ये जो एआई रिलेटेड जो जो नए नए कंपनियों का जो नए इंस्ट्रूमेंट्स जो आए हैं, प्रोग्राम्स जो आए हैं, माइथोस जैसी जो प्रोग्राम जो मार्केट में बाहर लिमिटेड तरह से आई है, वो बैंकिंग व्यवस्था के लिए किस तरह से किसके ऊपर हावी होगी, इसीलिए जो बैंकिंग स्टॉक्स जो है उसमें काफ़ी उनका प्रभाव पड़ा है. उसी तरह अगर आप रिलायंस देखेंगे, जैसे रिलायंस जैसे कंपनी, वो रिकवरी आज ही हुई है क्योंकि एक दिन पहले उसके रिजल्ट के अच्छा नहीं होने से वो आज की थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है. पर ओवरऑल जो मार्केट की जो जो आउटलुक जो है
जी,
वो अभी भी उसी तरह बहुत ही अनिश्चितता में भरा हुआ है और इसी तरह चलता रहेगा. बट अगर दीर्घकालीन दृष्टि से देखेंगे तो युद्ध के समय जब 28 फरवरी का जो एक टाइम ले लेते हैं आप, और अब का टाइम जो है स्टॉक मार्केट में रिकवरी हुई है, और उस रिकवरी का कारण यह है कि स्टॉक मार्केट का यह विश्वास आ गया है कि ये शायद ये युद्ध चलेगा जरूर, पर इसकी जो इम्पैक्ट जो होगी स्टॉक मार्केट कंपनियों के अर्निंग्स के ऊपर वो लिमिटेड होगा. ये स्टॉक मार्केट का जो असेसमेंट जो है, मैं समझता हूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट है उसके साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता नहीं है. मैक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट अभी भी काफ़ी काफ़ी पेसिमिस्टिक है, वेर एज मार्केट का जो असेसमेंट है, मैं समझता हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये युद्ध विराम हो गया तो मार्केट फिर से वापस आ जाएगी, और जो निवेशक की जो अप्रोच जो है वो भी उसी चीज़ को दर्शाती है.
लेकिन हमने देखा कि कल एफआईआई की जो निकासी हुई है वो तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की हुई है. एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी भी जो पूर्वानुमान आप जो लगा रहे हैं वो सकारात्मक लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं निवेशक जब इन्हें देखते हैं तो हताशा होती है.
देखिए, जो 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 एफआईआई जो है उनकी जो अप्रोच जो है वो सिर्फ भारत की जो स्थिति है उसके ऊपर निर्भरशील नहीं है. उनका इमर्जिंग मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आपको ये भी देखना होगा कि उनकी जो जो दृष्टिकोण जो है वो फेड रिजर्व की जो मीटिंग जो होगी उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत निर्भरशील है. अगर फेड रिजर्व ने कुछ ऐसा कोई डिसीजन लिया जिससे कि वो पैसा वापस ले जा सकते हैं और ले जाकर वहां पे उसको निवेश करें
जी.
तो मैं समझता हूं कि उसके लिए भी जो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं, और जो इंडियन मार्केट के जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन मार्केट की जो रेजिलियंस जो है उसके ऊपर देख रहे हैं. और इसीलिए मैं देखता हूं कि 28 फरवरी से लेकर आज तक की जो जितनी बीच में जितनी सेटबैक आई थी मार्केट में
जी.
वो काफी रिकवर हो चुकी है और स्टॉक मार्केट ने उसको ओवरकम कर लिया है. और ये जो अनसर्टेनिटी जो अनिश्चयता जो है ये अप एंड डाउन ये चलता रहेगा, पर अगर जो युद्ध विराम अगर इसका घोषणा हुआ तो उससे अचानक मार्केट में वही चुस्ती नजर आने की हम उम्मीद कर सकते हैं.
सो सिंस वी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, द कंटिन्यूड FII सेलिंग वाज लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग एक्टिव एंड पैसिव इनफ्लोज इंक्लूडिंग EPFO एलोकेशन टू इक्विटीज. इज दिस DII फायरवॉल सस्टेनेबल और डज इट मास्क अ डेंजरस अंडरलाइंग फ्रिजिलिटी?
I would broadly agree with you, but this is one aspect and one perspective, which is that the manner in which the West Asia conflict will play out on the Indian economy is something that is to be closely watched. It is possible that the impact of the second order effect, as we call it, of whatever decision the government takes on petrol and diesel prices after 29th of April, which is the elections, end of elections, that will certainly influence the economy. If the government decides to come out with a huge kind of a rescue package for a large number of companies which have been hit hard by higher prices, now it's possible that the stock market will respond to that. So therefore, my reading is that the domestic investors are still very, very positive, which is why you are seeing that in spite of the FIIs pulling out money, domestic flows of resources into the domestic market continues by and large unabated.
Okay, let's look at the markets today. The banking stocks led the decline after the RBI confirmed its expected credit loss framework. And also people are looking at the US Fed rate decision and also the hawkish stance that was taken by the Bank of Japan today. And of course, we'll be reading out about the weak Asian markets soon. So all these factors put together, did they influence the banking stocks today?
The expected credit loss announcement of the RBI certainly impacted. But my reading is that the technology hit that the companies will take, banks will take, is also not to be understated. Please remember that the new AI enabled, especially the Anthropic's Mythos technology, has changed the way the banking sector is looking at its safeguards and guardrails, checks and balances. As in, indeed, the finance minister had a meeting with the banking sector, particularly the public sector banks, to see in what way the guardrails, the technological guardrails in the system should be improved. So my reading is that the banking sector is responding to that nervousness as well. RBI has just a few days ago had cancelled a license of another private sector bank, payments bank, as we. So therefore, the RBI is also looking at these things very closely. So the banking sector is reflecting those nervousness. But the NPA levels, the broad inherent strength of the banking system is still intact. And I would not say that there is anything which needs to be worried very much on this sector.
So there were reports that Iran has sent their proposal to the U.S. In fact, the spokesperson from the U.S. White House mentioned that announcement is going to come out sometime soon. What are your expectations from that? If that were to happen, then historically we saw that Sensex recovered. We were discussing this. Recovered 20% after the Kargil war and 80% after the 2008 Mumbai attacks. Does this playbook apply to the current US-Iran war scenario, considering the proposal now having gone from Iran to the US?
Well, you know, you gave very interesting comparisons. But there is one thing that you must realize, and that what is happening in West Asia is, you know, you are expecting some announcements tomorrow, and then when tomorrow comes, there is an announcement that sets you back by several days, because the American president has behaved in a mercurial way.
Okay.
Now, in the case of Kargil war, in the case of what happened in 2007-08, these fluctuations were not that common. But today you are dealing with a different set of factors.
And today you're also involving the nuclear adjacent actors.
Absolutely.
क्योंकि क्षेत्र विशेष की भी बात हो रही थी, बैंकिंग की बात हुई है, तो भट्टाचार्य जी, आज हमने देखा कि आईटी में भी एक गिरावट आई है 0.7% की. आज अश्विनी वैष्णव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी में ये बताया, उसके बारे में ये बताया कि हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि स्मार्टफोन अब भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है, तो जो कि देश के सामर्थ्य को दर्शाता है. तो उनके इस कथन को आप कैसे रेखांकित करते हैं?
देखिए, जरूर जो स्मार्टफोन जो है उसकी जो निर्यात तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है उन्होंने, पर ये एक मैन्युफैक्चरिंग एक कैपेबिलिटी है जो पीएलआई स्कीम्स के तहत उन्होंने हमने दर्शाया है, पर उसके साथ जो टेक्नोलॉजी का जो जो खेल जो हम देखने वाले हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका अब मूल्यांकन करना या आकलन करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन है इस वक्त, क्योंकि किस तरफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ हमें ले जाएगा, स्पेशली भारत जैसे अर्थनीति में जहाँ नौकरियों की और डिग्निफाइड जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, क्वालिटी जॉब्स की, वहां पे मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी एक धक्का आ सकता है. और जॉब की तरफ, हालांकि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म जो डिसलोकेशन जो होगा वो मैं समझता हूँ कि काफी एक चुनौतीपूर्ण चीज होगी.
ये तो एक बात है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई. इसके साथ ही मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी. आप हमारे साथ जब कार्यक्रम में पिछली दफा जुड़े थे, तो निवेशकों के नजरिए से अभी तक हमने विवेचना की, अब हमें स्ट्रेट उनके लिए भी एक उनकी तरफ से सवाल है कि जो भी आपने ये कहा था कि जो अभी निवेशक पहले से ही हैं, उनके लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि निवेश करने का समय आ गया है, वो केवल अपने निवेश में जुटे रहें, तो क्या अभी आपका ये वक्तव्य जो है वो प्रासंगिक है?
मैं एकदम प्रासंगिक है. आपने अच्छा किया यह सवाल कर. अगर आप निवेश में जुड़े हुए हैं तो आपकी जो 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 पोजीशन जो है
जी,
वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी जो जो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अभी भी बरकरार है, और ये समय नहीं है कि आप अगर बाहर जाएंगे मार्केट से तो आपको
घाटा लेकर
जाएंगे. पर अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में जुटे रहने का समय ये है.
बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. श्रोताओं, तो ऐसा रहा कि आज अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों में मिश्रित रुझान देखने को मिला. जापान का निकी 1% से अधिक, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% नीचे रहा. वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% बढ़कर 6,641 के नए शिखर पर बंद हुआ, जबकि दिन के कारोबार के दौरान ये 6,712 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. इधर बात करें जापान की, तो जापान के केंद्रीय बैंक ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति पक्ष जोखिमों के कारण मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाते हुए अपनी नीतिगत दर को 0.75% पर अपरिवर्तित रखा। बैंक ऑफ जापान ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया और अपने मुख्य मुद्रास्फीति अनुमान को 1.9% से बढ़ाकर 2.8% कर दिया। आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी गिरावट देखी गई श्रोताओं। जर्मनी का डैक्स 0.4% गिरा, फ्रांस का कैक 0.2% नीचे आया, जबकि लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक स्थिर रहा। भट्टाचार्य जी, बैंक ऑफ जापान ने जैसा फॉरकास्ट किया है कि इन्फ्लेशन को अप फॉरकास्ट किया है और ग्रोथ रेट को कम आका है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो बैंक ऑफ जापान जो अपनी अर्थनीति को जो अब देखता है
जी,
वो अपनी अर्थनीति में इस वक्त उसको बहुत बड़ी एक चैलेंज, वो एक एनर्जी डिपेंडेंट देश है
जी।
वो वेस्ट एशिया में जो हो रहा है और सारे विश्व में जो एनर्जी की जो एक समस्या है जो ऊपर से आ रही है
जी,
तो उसको देखते हुए जापान की अर्थनीति सबसे बड़ी, वो तो विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थनीति है
जी,
तो उसकी जो प्रॉब्लम्स जो है वो साफ नजर आ रही है और इसीलिए मैं ये देख रहा हूँ कि जापान की जो असेसमेंट जो है वो एकदम जो वही दर्शा रही है, वो नर्वसनेस जो जापान में वही दर्शा रही है कि फिस्कल जो ग्रोथ का फोरकास्ट है
जी,
1% से एक में आधा होकर 0.5% कर दिया गया है। सो मुझे एकदम कोई आश्चर्यजनित मैं नहीं हूँ इस असेसमेंट से।
Moving on, Wall Street began the eventful week on a subdued note. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose 0.2% and the S&P 500 added more than 0.1%, while the Dow Jones Industrial Average dropped over 0.1%. Despite the spike in crude prices, the benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq Composite closed at record highs. Meanwhile, investors are eagerly awaiting the Federal Reserve meeting beginning tonight, as well as the significant seven companies' results due later this week. AKB, the U.S. Fed rate decision looms alongside the Iran war stalemate. How does this dual macro geopolitical overhang reshape India's bond market, yield curve, and equity risk premium?
It makes it more complicated because if... the pressure on the Fed to raise interest rates is very high, and I think if the Fed goes for it, then certainly more money will flow out of the Indian markets, and that will create adverse impact for every asset class in India. So the Fed Reserve is decision. Is very, very crucial and critical for the Indian stock market and the market.
India's industrial output growth stood at 4.1% in March on an annual basis. However, in February, growth rate was 5.1%. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, growth in industrial output in last month was mainly driven by mining, which expanded by 5.5% compared to 3.1% in February. However, manufacturing growth eased from 5.9% to 4.3% in March. Electricity generation growth also slowed from 2.3% to 0.8% during the same period. Mr. Bhattacharya, with industrial production easing to 4% from 5.2%, is India entering a synchronized slowdown of manufacturing, exports, and consumption?
Well, because manufacturing has got the highest weight in the IIP, Index of Industrial Production, certainly it does not augur too well for India's manufacturing sector. Please also remember, with the March number coming out, you have now got a full year's data for what has been the industrial growth, so to say, for the last financial year, which comes at a lower point of around 4.1%. So which means that a 4.1% growth for industry is something that we should feel a little worried about, because largely it reflects the weaknesses in India's manufacturing sector.
Moving on, the pharma sector has hailed the free trade agreement signed between India and New Zealand. Talking to media, Chairman, Pharmaceutical Export Promotion Council of India, Namit Joshi said that the agreement is a step towards collaboration, co-development and innovation between the two countries.
This FTA brings in very interesting perspectives between the two nations. It's not a trade agreement, we would say. Rather, we would say it's an intent of collaboration, co-development, co-innovation, a lot of activities which both the nations are going to develop together. How it is relevant for pharmaceutical industry? I think right now we have a share of wallet of 4%. We export around 60 million worth of medicines to New Zealand, but the potential of New Zealand stands at 1.45 billion.
Electronics sector has also hailed the free trade agreement. Chairman of India Cellular and Electronics Association, Pankaj Mahindru, described the agreement as a continuation of the government's efforts over the last years.
India-New Zealand FTA is a continuation of what India has been trying to do at least for the last 1 or 2 years under this government. Before this, we had FTAs, but most of our FTAs, for example, the ASEAN FTA was with competing manufacturing countries, and it was not plus for our nation's manufacturing and trade. The FTAs we are going in for now and the BTAs we are going in for now are with the developed nations, which is appropriate and right for the Indian economy and the Indian trade. We will benefit a lot from this FTA.
Global crude oil prices jumped over 3%, extending the previous session's gains as the Strait of Hormuz waterway remained largely shut. Brent crude was trading 3.5% up at $111.99 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 4.8% higher at $100.99 per barrel when reports last came in. A brief comment from you, AKB, on what you feel about the prices. We've touched one.
It's bad news for all the Asian countries, including India, because the Indian basket crude oil price will naturally be reflecting that. Our reliance on the Russian crude oil will go on. So as long as the Strait of Hormuz remain blocked, and there's a larger impact because all the refineries in the world, particularly in the West Asia, are now almost
cascading.
Their stocks are almost full. So they a time has come where they may have to stop their production, and that would be bad news.
Okay. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading at 1,51,186 rupees per 10 grams, while silver was trading at 2,43,720 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 1.5% की गिरावट के साथ 1,49,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और मई अनुबंध वाली चांदी 2.9% गिरकर 2,34,762 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए।
नमस्कार, बहुत धन्यवाद।
थैंक यू भट्टाचार्य फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल, मेजर एशियन स्टॉक इंडिसेस एंड मिक्स्ड, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप ओवर 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।